कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Thank you. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Bora Hari Bola, Hari Bola, Hari Bola, Nitai Bora Hari Bola.
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतह डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। श्री शुकरताल धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय।
ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वरकेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः हे कृष्णकरुणा सिन्ध दीनबन्ध जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी हे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण। तो इस यात्रा में हम सब अभी पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आपको ज़्यादा कठिनाई अब तक नहीं हुई होगी। वैसे तीर्थ यात्रा में थोड़ी बहुत कठिनाई होनी ही चाहिए, इसके बिना तीर्थ यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती। तीर्थ यात्रा केवल आराम के लिए नहीं होता है, बिल्कुल सुविधाजनक यात्रा हो तो अच्छी बात है, परंतु संभावना ये रहती है कि यात्रा का भाव हम भूल जाएं, और आगे चल के भी ऐसे कुछ कार्यक्रम में फेरबदल हो सकता है। जैसे अब आपकी रेलगाड़ी 2 घंटे लेट देर से पहुंची, तो इससे सारा कार्यक्रम अब देर से चल रहा है। इसलिए यहाँ जो प्रवचन होगा वो अब थोड़े कम समय में समाप्त करना होगा, तो संपूर्ण प्रवचन यहाँ इस विषय के ऊपर नहीं दे पाएंगे समय के अभाव के कारण, क्योंकि आज हमें यहाँ से निकल के हरिद्वार भी पहुँचना है। जिस स्थान में अब हम यहाँ बैठे हैं वो है शुक्रताल या शुकताल। इसी स्थान में शुकदेव महाराज ने महाराज परीक्षित को 7 दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। राजा परीक्षित ने उपवास का व्रत स्वीकार किया था, और इन 7 दिनों में उन्होंने कोई भोजन ग्रहण नहीं किया, एक कण भी नहीं, एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं किया, केवल कृष्ण कथा के अमृत के पान से उनका शरीर, उनका मन, बल्कि उनकी आत्मा पूरी तरह से तृप्त हो गई। इसलिए उनको कोई भोजन आदि की आवश्यकता पड़ी ही नहीं, और यदि थोड़ा बहुत कष्ट हुआ भी तो वो उसकी ओर ध्यान न देने में सक्षम हो गए थे। कृष्ण कथा के प्रति रुचि अपने जीवन में अपने हृदय में जागृत करने के फलस्वरूप अब जब हम यहाँ देरी से पहुंचे तो चर्चा ये चल रही थी कि भोजन पहले हो या भजन पहले हो, तो कई भक्तों का मत था कि यदि हम भोजन पहले लेंगे तो फिर भजन के समय सो जाएंगे। परंतु हमारा विचार ये था कि हम सब महाराज परीक्षित तो हैं नहीं, सुबह सुबह प्रसाद लेकर निकले हैं, और यदि और प्रवचन चलता रहे आगे, हमारा पेट बहुत ज़्यादा खाली रहे, तो पूरी संभावना है कि हमारे मन में विचार आएगा, अरे कब प्रवचन समाप्त होगा और कब प्रसाद आरंभ होगा, तो फिर सारी कथा का आनंद भी पूर्णतया नहीं मिल पाता है। तो खैर, इसलिए ये निर्णय लिया गया कि पहले प्रसाद ग्रहण करके सभी भक्त संतुष्ट हो जाएं। वैसे कथा में सोना तो नहीं चाहिए, फिर भी प्रसाद पहले ग्रहण करने के कारण यदि कोई सो भी जाए तो ठीक है, ये भला कि इसके हम खाली पेट पर रहें और सोचते रहें कब खत्म होगा कब खत्म होगा। यह पास में एक वट वृक्ष है जिसके नीचे शुकदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित बैठे थे, और वहां पर इसकी आवश्यकता है क्या, जनरेटर की आवश्यकता, और वहां पर बहुत बड़ी संख्या में न केवल भारतवर्ष से परंतु ब्रह्मांड के कोने कोने से बहुत सारे ऋषि मुनि यहाँ पधारे थे। तो राजा परीक्षित आदर्श श्रोता थे श्रीमद् भागवत के, शुकदेव गोस्वामी आदर्श प्रवक्ता थे श्रीमद् भागवत के। आदर्श प्रवक्ता और आदर्श श्रोता, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो फिर ये संगम अमृत से पूर्ण होता है। जब प्रवक्ता और श्रोता सजातीय नहीं होते हैं तो फिर रस खंडित हो जाता है, रस कड़वा हो जाता है। सजातीय का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि हम इस जाति के हैं, हम उस जाति के हैं, हम ब्राह्मण हैं क्षत्रिय हैं, ये नहीं। इस संदर्भ में सजातीय शब्द का तात्पर्य है कि उनकी भगवान के प्रति भावना एक जैसी है, एक तरह का भाव है, साथ साथ में दोनों कोई भौतिक लाभ नहीं चाहते हैं इस भागवत कथा से। वैसे देखा जाए तो दोनों प्रवक्ता और श्रोता यदि भौतिक लाभ चाहते हैं तो वो भी सजातीय है, दोनों की एक जैसी जाति है, दोनों ही भौतिक लाभ चाहते हैं, परंतु सच्चा लाभ तो उससे उत्पन्न नहीं हो पाएगा। वास्तविक लाभ तो तब होगा जब प्रवक्ता श्रोता साथ साथ में जितने भी और उपस्थित लोग हैं श्रोता गणों में, वो सब लाभान्वित हो जाते हैं। शुकदेव गोस्वामी एक आदर्श गुरु हैं, राजा परीक्षित एक आदर्श शिष्य हैं। दोनों गुरु शिष्य इन दोनों के मिलन से सारी दुनिया को ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश मिला है ये श्रीमद् भागवत का। ये भगवान की बहुत विशेष योजना थी। आप सबको पता है कि महाभारत के युद्ध के उपरांत पांडवों का विजय हो चुका था। भीमसेन ने दुर्योधन को परास्त कर दिया था, परंतु अश्वत्थामा बहुत विचलित हो गया था। अश्वत्थामा ने रात के समय जाकर द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। साथ साथ अनेक ऐसे योद्धा थे जैसे धृष्टद्युम्न आदि, इनकी भी हत्या कर दी जबकि वो सो रहे थे। यद्यपि ये सब क्षत्रिय युद्ध के नियमों के विरुद्ध है, फिर भी तो खैर अश्वत्थामा को क्रोध ये था कि मेरे पिताजी की हत्या हुई है पांडवों के द्वारा, और जिस तरह से उनकी हत्या हुई वो ठीक नहीं था, इसलिए मुझे मेरे पिता की हत्या का बदला लेना है। तो द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करके, धृष्टद्युम्न की रात में सोए हुए अवस्था में हत्या करके आदि, अश्वत्थामा संतुष्ट नहीं हुआ। फिर अश्वत्थामा ने जाकर सोचा कि अब ये 5 पांडव तो बच गए, लेकिन इनके जितने और वंशज थे उनकी मृत्यु तो हो गई, परंतु एक वंशज इनके अभी तक जीवित हैं और वो उनका अभी तक जन्म हुआ नहीं है, और वो है अभिमन्यु का पुत्र। वैसे अभिमन्यु की भी मृत्यु हुई थी रणभूमि पर, और अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा के पिता थे महाराज विराट, जिनके राज्य में पांडवों ने अपना 1 वर्ष अज्ञातवास का बिताया था। तो उत्तरा के गर्भ में बच्चा था, और अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और ये ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र होता है जो आजकल के अणुबम से भी कहीं बढ़कर शक्तिशाली होता है, परंतु इतना सूक्ष्म होता है ये मंत्रों के द्वारा छोड़ा जाता है, और केवल उसी व्यक्ति को जाके हानि पहुंचाता है कि जिसके नाम पे वो छोड़ा गया है। उसके पास में रहने वाले लोगों को, आसपास के लोगों की हानि नहीं करता, परंतु आजकल के जो अणुबम आदि होते हैं वो जब किसी स्थान में गिरते हैं तो बस तहस नहस हो जाती है। तो उत्तरा ने देखा कि ये ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, और अवश्य ये अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र भेजा है मेरे गर्भ का नाश करने के लिए। तो उत्तरा दौड़ते हुए श्री कृष्ण के पास आई, त्राही त्राही मेरी रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, भले मेरा शरीर नष्ट क्यों ना हो जाए परंतु मेरे बच्चे का शरीर आप बचाइए किसी न किसी तरह से। तुरंत श्री कृष्ण समझ गए कि ये कार्य अश्वत्थामा द्वारा किया गया है। श्री कृष्ण ने कहा, उत्तरा से कोई चिंता नहीं करो, और फिर श्री कृष्ण ने अपनी योग माया शक्ति का प्रयोग किया और उत्तरा के गर्भ में बच्चे के इर्द गिर्द एक आवरण बनाया अपने माया शक्ति का, जिसके द्वारा ब्रह्मास्त्र का असर जो है वो नहीं हो पाया पूरी तरह से। वैसे आगे चल के सूत गोस्वामी बताते हैं कि वास्तव में गर्भ तो जल गया था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने पुनः जीवित कर दिया उस बच्चे को। और परीक्षित आगे चलकर उनका नाम परीक्षित हुआ। तो उस बच्चे ने देखा कि मेरे गर्भ में कुछ बहुत भयानक चीज आ रही है, परंतु मुझे कोई हानि नहीं हो रही है, क्योंकि एक बहुत ही प्रकाशमान, तेजस्वी, सुंदर एक व्यक्ति जो बहुत छोटे हैं, अंगुष्ठ मात्रेण, केवल अंगूठे के ऊंचाई का शरीर है उनका, और वो मेरे आसपास है और घूम रहे हैं। चतुर्भुज रूप है उनका, शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ है उन्होंने, सांवला रंग है, पीतांबर है, काले घुमराले बाल हैं, हल्की सी मुस्कान है। आशीर्वाद प्रदान करते हुए, अभय प्रदान करते हुए, रक्षा का आश्वासन मानो वो प्रदान कर रहे थे बालक को। बच्चे ने वो दृश्य कभी भूला नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसी प्रकार से माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है, उसे भक्ति के यदि अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, तो फिर आजीवन वो उन संस्कारों को भूलेगा नहीं। भक्ति के संस्कार अच्छे रहेंगे तो वो अच्छी तरह से सुदृढ़ रूप से कृष्ण की भक्ति कर पाएगा। इसलिए माँ के गर्भ में रहते हुए भी बच्चों को प्रशिक्षित करना, प्रारंभ करना चाहिए। इससे अच्छे संतान की का जन्म होगा, जो सुसंस्कृत होंगे और कृष्ण भक्त भी। तो खैर, अब राजा परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित नाम इसलिए रखा गया था, सुखदेव जी बताते हैं या सुत गोस्वामी जी बताते हैं, क्योंकि वो सब जगह परीक्षा करते रहे अपने जन्म के बाद, हर एक व्यक्ति की परीक्षा करते रहे कि कहीं ये तो वो व्यक्ति नहीं जिनका दर्शन मैंने माँ के गर्भ में किया था। तो इस तरह से परीक्षा सबकी करते रहने के कारण उनका नाम हुआ परीक्षित। राजा परीक्षित का जन्म हुआ माता उत्तरा के गर्भ से, और उस समय ज्योतिष आदि वहां पर आए। ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की, परीक्षित महाराज के शारीरिक चिन्ह बहुत शुभ थे, और इससे ये पता चल सकता था कि ये व्यक्ति आगे चल के बहुत महान होने वाले हैं, बहुत बड़े राजा होंगे, धर्म परायण होंगे, पुण्यवान होंगे, हर दृष्टि से एक आदर्श राजा, एक आदर्श व्यक्ति होंगे, और आगे चल के उनकी ख्याति भी बहुत फैल जाएगी सारे पृथ्वी में ही नहीं, परंतु सारे ब्रह्मांड में। जहां तक प्रजा के पालन का प्रश्न है, वो ठीक सूर्यदेव के सुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु के समान होंगे। जहां तक सत्य व्रत होने की बात है, तो सीधे वो महाराज या प्रभु रामचंद्र के समान होंगे, ये सब ज्योतिष कह रहे थे। और शिवी महाराज की तरह वो दान देंगे सारे प्रजा को, दानवीर, श्री कृष्ण का भी एक नाम है दानवीर। साथ साथ में महाराज भरत, जो कि दुष्यंत महाराज के पुत्र हैं, ठीक उन्हीं की तरह ही वो अपने वंश के नाम और ख्याति को बढ़ाएंगे। साथ साथ में धनुष धारण करने वालों में से वो अर्जुन के समान ही होंगे, और अग्नि के समान वो उनका उनका तेज रहेगा और गंभीर्य उनका एक सागर के समान रहेगा, एक सिंह के समान शक्तिशाली होगा और अन्यों को शरण देने में वो हिमालय की तरह होगा। और जहां तक सहनशीलता की बात है तो वो पृथ्वी माता की तरह सहनशील होगा और अपने माता पिता की तरह भी वो ऐसे ही सहनशील होगा। जहां तक मन की एकाग्रता की बात है, शांति की बात है, वो युधिष्ठिर महाराज स्वयं ब्रह्मादेव ब्रह्मा जी के समान होंगे और आगे चल के उदारता में कैलाशपति शिव जी के समान ये बच्चा होगा। और जहां तक अन्यों को आश्रय देने की बात है, वो स्वयं भगवान नारायण के समान होंगे जो कि लक्ष्मी देवी के भी आश्रय हैं। अन्यों की बात तो दूर है, ये बच्चा स्वयं श्री कृष्ण के समान होगा और रांति देव के समान भी बहुत प्रसिद्ध हो जाएगा। इस तरह से ज्योतिषियों ने भूरी भूरी प्रशंसा की महाराज परीक्षित की। महाराज परीक्षित, महाराज युधिष्ठिर और उनके भाइयों के लाड़ प्यार के वातावरण में बड़े हुए। परीक्षित महाराज के तो पिता थे नहीं, युद्ध में ही उनका देहांत हो चुका था। पांडवों ने 36 वर्षों तक राज्य किया कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद, और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि कलयुग के लक्षण अब प्रकट हो गए हैं। अर्जुन अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए और उनका संग प्राप्त करने के लिए हस्तिनापुर से द्वारका गए थे, काफी समय तक लौट के नहीं आए। युधिष्ठिर महाराज को बड़ी चिंता हुई कि अर्जुन की कोई खबर नहीं है, क्या बात हो सकती है। और सब जगह युधिष्ठिर महाराज ने अशुभ लक्षण देखे। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। वराह मिहिर द्वारा विरचित बृहत संहिता आदि जैसे ग्रंथों में इन विद्याओं का वर्णन है। तो ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अनादि काल से सारे वातावरण की परीक्षा करके इसका एक विज्ञान बनाया। तो युधिष्ठिर महाराज इस ज्ञान को भली भांति जानते थे। उनको पता हुआ कि कुछ न कुछ तो ठीक नहीं है। और जैसे ही अर्जुन आए, युधिष्ठिर महाराज को पता चला कि अर्जुन के चेहरे को देखकर कि एक ही बात हो सकती है कि शायद कहीं श्री कृष्ण तो स्वधाम लौट के नहीं गए। और ऐसे ही हुआ था, श्री कृष्ण तो स्वधाम चले गए। यदुवंश के जो राजकुमार थे, उन्होंने परस्पर एक दूसरे के साथ युद्ध करके सारे यदुवंश का विनाश कर दिया। ये भी वास्तव में श्री कृष्ण की ही इच्छा थी, क्योंकि यदुवंशियों का काम भी पूर्ण हो चुका था। वो श्री कृष्ण की सहायता करने के लिए यहाँ पर आए थे। अब श्री कृष्ण ने अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के बाद अब यदुवंशियों का कोई काम नहीं रहा यहाँ पर, तो श्री कृष्ण ने उनकी लीलाओं को भी समेट लिया, वापस बुला लिया। तो जिस क्षण से, जिस समय से श्री कृष्ण स्वधाम लौट गए, ऐसे कहा जाता है कि उस समय से कलयुग प्रारंभ हुआ। और कलयुग के लक्षण युधिष्ठिर महाराज ने देखे और ये जान लिया कि श्री कृष्ण स्वधाम चले गए हैं। तो उसी समय महाराज युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि हम अब वनवास जाएंगे, लेकिन पिछली बार जैसे वनवास गए थे वैसे नहीं, इस बार हमेशा के लिए। पिछली बार तो केवल 13 वर्षों के लिए गए थे, इस बार वो इस संकल्प को लेकर गए थे कि हम लौटेंगे नहीं। वैसे पुराने जमाने में जब ऐसे तीर्थ यात्रा में लोग निकलते थे, विशेष करके ऐसी यात्राएं जैसे कि बद्रीनाथ आदि, जिसमें अनेक धोखे हुआ करते थे और आज भी हैं, तो घर के लोग यही सोच के उनको विदा करते थे कि ये लौट के शायद नहीं आएंगे, अंतिम बार इनको हम देखेंगे। और ये सबसे अच्छी मृत्यु मानी जाती थी उस समय। आजकल के सभ्यता के अनुसार तो ये बहुत विचित्र बात मानी जा सकती है, परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने घर से निकला और तीर्थ स्थान में न जाने कहाँ उसका देहांत हो गया, तो बस वो बहुत महान माना जाता था। कल ही हमें एक भक्त बता रहे थे कि उनके दादाजी के समय था, करीब करीब 80-100 साल पहले की बात है, कि जब वो बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि यात्रा करके वापस आए तो उनके लिए बड़े स्वागत कक्ष हुआ, वहां पे स्वागत समारोह हुआ कि वो आ गए वापस क्योंकि ये सोचा जाता था, समझा जाता था कि एक बार वो निकले तो लौट के नहीं आएंगे, लेकिन लौट के आ गए। तो उन दिनों में ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी, लोगों को सालों साल लग जाते थे तीर्थ यात्रा करने के लिए। हम तो केवल 10-15 दिन निकाल कर आए हैं, लेकिन उन दिनों में यदि ये यात्रा करनी होती तो कई वर्ष लग जाते हैं। और जब इतनी दूर, समझ लीजिए दक्षिण भारत से ऊपर की ओर आए हैं, तो केवल बद्रीनाथ दर्शन करके तो नहीं जाएंगे, फिर द्वारका भी जाएंगे, नाथद्वारा भी जाएंगे, और जितने भी उत्तर भारत में तीर्थ स्थान है उनमें जाएंगे, वृंदावन मथुरा जाएंगे, अयोध्या आदि जाएंगे। तो ये सब करने के बाद तो व्यक्ति के कितने साल बीत जाते थे, और विशेष करके इसलिए लोग बुढ़ापे में ही निकलते थे ताकि कोई समस्या न हो। तो युधिष्ठिर महाराज और उनके भाइयों ने तय कर लिया कि अब बस बहुत हो गया, ये भौतिक सृष्टि अब रहने लायक स्थान नहीं है, और कलयुग शुरू हो रहा है और श्री कृष्ण नहीं है, तो यह रहने से क्या लाभ। तो वो निकल पड़े। निकलने के पहले महाराज युधिष्ठिर ने राजा परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया। राज्याभिषेक के बाद पांचों पांडव निकल पड़े, और उधर राजा परीक्षित राज्य करने लगे, विश्व सम्राट थे। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के प्रपौत्र अर्थात उनके पुत्र के पुत्र के पुत्र वज्रनाभ, जो कि अनिरुद्ध के पुत्र थे, अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र थे, और प्रद्युम्न श्री कृष्ण के सबसे बड़े पुत्र थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने वज्रनाभ को शूरसेन या मथुरा प्रांत का राजा नियुक्त कर दिया। अब वज्रनाभ का नाम तो अवश्य आप सबने सुना होगा। वज्रनाभ ही हैं जिन्होंने कि वृंदावन के व्रजमंडल के सबसे महत्वपूर्ण विग्रहों की स्थापना की, उनको बनवाया और फिर उनकी स्थापना करी वहां पर की व्रजमंडल में। ऐसे अनेक विग्रह हैं, आज भी हैं ये विग्रह। तो फिर राजा परीक्षित यहां विश्व सम्राट के रूप में राज्य करने लगे। एक आदर्श राजा थे, जैसे कि भविष्यवाणी उनके जन्म के समय ही हुई थी, ठीक उसी प्रकार से राजा परीक्षित राज्य करने लगे। सारे विश्व में सब कुछ सनातन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार चलता था। राजा परीक्षित एक अपने महल में बैठे रहने वाले राजाओं में से नहीं थे, राज्य भर में भ्रमण किया करते थे देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। तो एक बार उन्होंने ये देखा कि एक शूद्र व्यक्ति गाय और बैल के ऊपर प्रहार कर रहा है। वैसे तो उसने एक राजा का पोशाक पहना है, परंतु ये राजा है नहीं। तो दंड देना चाहा राजा परीक्षित ने इस व्यक्ति को। बाद में पता चला कि यह व्यक्ति मूर्तिमान कली है, कलयुग का मूर्तिमान स्वरूप। तो खैर, कथा तो बहुत लंबी है, परंतु अब हमारे पास इतना समय नहीं है, इसलिए हम अभी केवल संक्षेप में बता रहे हैं। महाराज परीक्षित ने फिर कली को दंड दिया, चेतावनी दे दी, बहिष्कृत करना चाहा कली को अपने राज्य से, परंतु जब कली ने क्षमा याचना की और उनके राज्य में रहने की याचना की, तो परीक्षित महाराज ने कहा, ठीक है, आप ऐसे स्थान में रहोगे जहां की सोना होगा, क्योंकि जहां सोना होगा स्वर्ण, वहां पे मांसाहार होगा, मदिरा पान होगा, जुआ होगा, और व्यभिचार भी होगा। तो कली को ये स्थान दिए अपने राज्य में, परंतु जब तक राजा परीक्षित राज्य कर रहे थे, कली का कोई प्रभाव न हो पाया राज्य में। यद्यपि कली प्रकट तो हो गया था, परंतु प्रभाव नहीं हो पाया। परीक्षित महाराज जैसे शूर वीर बलवान और धर्मपरायण विश्व सम्राट के कारण, तो जो समाज के नेता होते हैं उनको महाराज परीक्षित के चरण चिन्हों में चलने का प्रयास करना चाहिए। और क्षत्रिय शब्द का वास्तविक अर्थ ये होता है कि जो प्रजा को मोबाइल फोन के माया से बचाए, कम से कम इस यात्रा में। तो माया से बचाना क्षत्रियों का सर्वोच्च कर्तव्य होता है। तो राजा परीक्षित ऐसे एक आदर्श सम्राट थे। और एक दिन हुआ ये, वैसे कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजा परीक्षित ने कली की हत्या क्यों नहीं कर ली, जबकि वो एक गाय और बैल के प्रति आक्रमण कर रहा था। ये तो एक मृत्यु दंड के योग्य गुनाह है वैदिक सभ्यता के अनुसार। तो राजा परीक्षित ने मृत्यु दंड क्यों नहीं दिया कली को? वैसे तो देखा जाए तो एक क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि जब कोई उसके शरण में आता है तो वो उस व्यक्ति को मार नहीं सकता, उसको शरण देना उसका कर्तव्य बनता है। साथ साथ ये चार युगों की जो श्रृंखला है, ये तो स्वयं भगवान ने ही बनाई है, ये प्रकृति या ब्रह्मांड का एक नियम है, सत्य त्रेता द्वापर और कली। तो यदि ऐसे जान से मार डालते हैं राजा परीक्षित, तो वो भगवान की योजना में, भगवान ने बनाए हुए व्यवस्थापन में हस्तक्षेप कर देते। इसलिए परीक्षित महाराज ने ठीक समझा कि कली की हत्या नहीं करूंगा मैं। लेकिन एक और गुह्य कारण भी है इसके पीछे, और वो कारण ये है कि महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, शास्त्रज्ञ थे, और वैसे तो उन्होंने श्रीमद् भागवत आगे चल के सुनना था, परंतु सार उनको अच्छी तरह से पता था। और क्या पता था उनको? कि इस कलयुग में ढेर सारे दोष होने वाले हैं, जैसे कि आगे चल के शुकदेव गोस्वामी उनको बताने वाले थे कि ये कलयुग दोषों का सागर है। तो ऐसे कलयुग के समय हम देखते हैं सब जगह दोष ही दोष दिखाई पड़ते हैं, विरला ही कहीं कुछ एक अच्छा गुण दिखाई पड़ता है बहुत मुश्किल से, परंतु दोषों को देखना बहुत आसान है। सर्वव्यापी है दोष, परंतु राजा परीक्षित को पता था कि इस कलयुग में भगवान ने एक बहुत महान गुण भी प्रदान किया हुआ है, और जैसे कि आगे चल के सुखदेव गोस्वामी बताने वाले थे राजा परीक्षित को, कलो दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण, कीर्तनाद कृष्ण संगस्य मुक्त संगह परम व्रजेत, कि ये कलयुग दोषों का सागर है, परंतु इस समुद्र में एक अच्छा गुण है और वो है श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन। केवल कीर्तन करने से इस कलयुग के ये लोग हैं वो भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त हो सकते हैं। तो राजा परीक्षित इस तत्व से भलीभांति परिचित थे, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि कली की हत्या यदि मैं अब कर लूंगा तो फिर आगे चल के जो लोग हैं वो आसानी से भगवत प्राप्ति करने का जो अवसर है वो खो बैठेंगे। ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि इतने आसान तरीके से केवल नाम संकीर्तन के द्वारा व्यक्ति श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त कर सकता है, जबकि सत्य त्रेता द्वापर युगों में कितनी कड़ी तपस्या करनी पड़ती थी। तो कलयुग के इस महान गुण को जानने के कारण परीक्षित महाराज ने कलयुग को छोड़ दिया। तुमने बहुत बड़े गुनाह किए हैं और आगे चल के भी करोगे, परंतु तुम्हारे अंदर ये एक गुण होगा अच्छा, और इसलिए मैं तुम्हें जान से नहीं मार डालूंगा। तो खैर ऐसे अच्छी तरह से राज चलता रहा राजा परीक्षित का। एक दिन हुआ ये, जब राजा परीक्षित की आयु लगभग 60 वर्ष की थी, दूसरे शब्दों में उन्होंने 24 वर्ष लगभग राज्य संभाला हुआ था, क्योंकि उनकी जब आयु 36 थी तो पांडव राज्य को त्याग कर चले गए थे हिमालय में। तो 60 साल की आयु में एक दिन राजा परीक्षित वन में गए थे शिकार करने के लिए, और इधर उधर वन में घूमते घूमते उनको बहुत प्यास लग गई और बहुत थक भी गए थे। तो अचानक वो आ पहुंचे एक आश्रम में, और वहां शमिक ऋषि नाम के एक ऋषि रहा करते थे। जब परीक्षित महाराज वहां पहुंचे तो बहुत भयंकर प्यास लगी थी और बहुत अधिक थकावट भी हो गई थी। जब वो आए उन्होंने देखा कि शमिक ऋषि बैठे हैं ध्यान मुद्रा में और आंखें उनकी बंद हैं, और उन्होंने स्वागत नहीं किया राजा परीक्षित का। राजा परीक्षित को अच्छा नहीं लगा कि मैं तो विश्व सम्राट हूं, ये तो मर्यादा व्यतिक्रमण है, मर्यादा का उल्लंघन है कि राजा की बात तो दूर है, यदि कोई एक शत्रु भी किसी के घर में आए तो व्यक्ति को स्वागत करना चाहिए, मीठी बातें बोलनी चाहिए, सत्कार करना चाहिए, और मैं तो विश्व सम्राट हूं और मेरा स्वागत नहीं किया इस मुनि ने। भले कोई अच्छी दावत न खिलाई हो, परंतु दो मीठे शब्दों से स्वागत करने में क्या बुराई थी। आसन बैठने के लिए प्रदान करना चाहिए था, दो घोंट जल भी पिला लेते, वो भी नहीं किया। तो राजा परीक्षित को गुस्सा आ गया, वैसे श्रमिक ऋषि वास्तव में ध्यान में थे, पूरी तरह से बाह्य चेतना से वो मुक्त हो गए थे, आंतरिक अपने हृदय में वो मग्न थे पूरी तरह से। अब राजा परीक्षित ने सोचा कि ये तो उचित नहीं है, क्या ये मुनि जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, ये सोच के कि वो ब्राह्मण हैं और मैं क्षत्रिय हूं, और वर्ण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ब्राह्मणों को क्षत्रियों से श्रेष्ठ माना जाता है और मैं क्षत्रिय हूं, निम्न वर्ण का हूं, तो क्या इस वजह से इन्होंने मेरा सत्कार नहीं किया। तो ऐसे संशय राजा परीक्षित के मन में थे। तो राजा परीक्षित ने क्रोधित होकर देखा कि आप पास में एक मरा हुआ सांप पड़ा था, अपने धनुष के कोने से उन्होंने उस मरे हुए सांप को उठाया और श्रमिक ऋषि के कंधों पर रख दिया और वहां से चल पड़े असंतुष्ट होकर। अब यदि कोई साधारण व्यक्ति भूख प्यास के कारण कोई ऐसे क्रोधित होकर कुछ अनाप शनाप बोल देता है या कुछ ऐसे कार्य कर देता है जो कि अनुचित है तो हम समझ सकते हैं। जब हम भूखे रहते हैं तो जल्दी से क्रोध भी आता है, इसलिए एक भक्त थे जो कभी समय पर भोजन नहीं करते थे और अन्य भक्तों की शिकायत होती थी कि ये सबको डांटते हैं। हमने कहा इसलिए डांटते हैं कि समय पर भोजन नहीं खाते। अंग्रेजी में हम कह सकते हैं कि हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन। ज्यादा भूखा रहने से क्रोध या गुस्सा भी बहुत जल्दी से आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, इसलिए हमने कहा पहले भोजन कर लीजिए फिर भजन करें। तो साधारण व्यक्ति ऐसे भूख प्यास से ग्रस्त अवस्था में कुछ भला बुरा कह देता है, कर देता है, ये हम समझ सकते हैं। परंतु परीक्षित महाराज तो कोई ऐसे वैसे साधारण व्यक्ति थे नहीं, तो ये कैसे हुआ कि उन्होंने ऐसे छोटे से कारण के लिए ऐसे बड़ा अपराध कर दिया, और वो भी एक साधारण व्यक्ति के प्रति नहीं, श्रमिक ऋषि जैसे एक संत और मुनि के प्रति। पहली बात तो ये है कि एक सभ्य व्यक्ति को चाहिए कि वो भी अपने आप को संभाल के व्यवहार करे। ऐसे हमें उत्तेजित करने के लिए, विचलित करने के लिए परिस्थितियां तो आए दिन चलते आती हैं हमारे जीवन में, परंतु व्यक्ति को चाहिए कि जहां तक हो सके वो सभ्यता का पालन करना छोड़े नहीं, धर्म परायण रहे हर अवस्था में। विभीषण की यही प्रार्थना थी ब्रह्मा जी से, जबकि रावण ने बहुत कुछ मांगा और कुंभकर्ण ने भी बहुत कुछ मांग लिया, परंतु विभीषण ने क्या मांगा, एक ही चीज मांगा कि मुझे ये वरदान दीजिए कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मैं धर्म के पथ को कभी त्याग नहीं दूं। देखिए कितनी बड़ी प्रार्थना है ये। तो खैर, राजा परीक्षित की बात तो दूर है, एक साधारण व्यक्ति भी आता वो सोचता कि ये तो ऋषि मुनि हैं, ऋषि बड़े ऋषि हैं, हो सकता है ध्यान में बैठे हैं, इनका ध्यान क्यों भंग करें, वो स्वागत हमें इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। तो बुरा न मानकर व्यक्ति यूं ही चले जाता वहां से, या तो प्रतीक्षा करता कि इनका ध्यान खुले तब इनसे बात करें। जब साधारण व्यक्ति भी कभी ऐसे कर सकता है तो परीक्षित महाराज ने ऐसे क्यों व्यवहार किया श्रमिक ऋषि के प्रति। वैसे परीक्षित महाराज तो एक शुद्ध भक्त थे, और उनकी इंद्रियां तो पूरी तरह से वश में थीं और उन्होंने आजीवन बहुत से कष्ट झेल लिए थे। जीवन की बात दूर, जन्म के पहले से भी जब मां के गर्भ में थे तो ब्रह्मास्त्र उनके ऊपर छोड़ा था, तो कितना कष्ट हुआ था उनको मां के गर्भ में रहते हुए, सहन किया उन्होंने। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि परीक्षित महाराज के लिए भूख और प्यास के कारण ऐसे कोई कार्य करना, ये विश्वास करना मुश्किल है। जबकि आजीवन उन्होंने भूख प्यास से भी अधिक कष्टों को सहन कर लिया था। तो आचार्यों ने टीका की है कि इस घटना से, कि जिसमें राजा परीक्षित ने सांप उठाकर, मरे हुए सांप को उठाकर शमिक ऋषि के कंधों पर रख दिया, ये तो केवल भगवान की योजना ही हो सकती है और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अंतर्यामी या परमात्मा के रूप में स्थित हैं और प्रेरित करते हैं कोई कभी कभी कोई चीज करने के लिए। विशेष करके शुद्ध भक्तों को वो प्रेरित करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो भगवान ही ने ऐसी योजना बनाई, सर्वप्रथम कि राजा परीक्षित को वन में घूमते घूमते प्यास और भूख लग जाए, थक जाए, राजा परीक्षित अपना रास्ता खो बैठे और वो शमिक ऋषि के आश्रम में चले आए। भगवान ने ही व्यवस्था की कि जिस समय राजा परीक्षित वहां पर आए थे, वहां पे शमिक ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे, बाह्य चेतना उनकी नहीं थी। तीसरी बात कि राजा परीक्षित को इतना क्रोध आया और ऐसे संशयपूर्ण दृष्टि से उन्होंने शमिक ऋषि जैसे मुनि के प्रति देखा, ऐसे उचित नहीं था इस तरह का संशय करना, लेकिन परीक्षित महाराज ने किया और अंततः वो मरे हुए सांप को उठाकर उनके कंधे में रखना, तो ये सारी चीजें भगवान की व्यवस्था थी, भगवान की योजना थी। क्योंकि आगे चल के भगवान चाहते थे कि परीक्षित महाराज उनके धाम में लौट के आए, क्योंकि वो उनके शुद्ध भक्त थे। भगवान चाहते थे ये भी कि सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की कथा हो जाए और इसके लिए पात्र व्यक्ति श्रवण के लिए राजा परीक्षित ही हैं। और इस आदि आदर्श गुरु और आदर्श शिष्य के मिलन के द्वारा जब भागवत कथा के अमृत का अमृत बहने लगेगा, तो ऐसे ये सारे ब्रह्मांड में बाढ़ इसका फैल जाएगा, इस अमृत का सारे जगत का कल्याण होगा इस एक कथा से। तो जगत का कल्याण करना चाहते थे भगवान और राजा परीक्षित को एक निमित्त बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा परीक्षित को इस तरह का कार्य करने के लिए प्रेरित किया, अन्यथा ये तो संभव नहीं था। तो खैर, राजा परीक्षित वापस राजमहल में लौट के आ तो गए और जैसे आए भी वो संशय कर रहे थे मन में बार बार कि क्या जानबूझ के उन्होंने मेरा अनादर किया, क्या केवल वो ध्यान में रहने का ढोंग कर रहे थे। लेकिन बाद में उनको बड़ा पछतावा हुआ, अरे रे रे, मैंने क्या कर दिया, भूख प्यास से ग्रस्त होकर मैंने ऐसे भयंकर अपराध किया एक मुनि के प्रति, शमिक ऋषि के प्रति, कैसे कर दिया मैंने, ये तो बहुत बड़ा अपराध हुआ, अब कोई दुर्घटना घटने वाली है। उधर शमिक ऋषि के एक पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी। अभी श्रृंगी की आयु केवल 12 वर्ष की थी। श्रृंगी अपने मित्रों के साथ कौशिक नदी के तट पर क्रीड़ा कर रहा था, जैसे बच्चे करते हैं, और अपने योग सिद्धि से इस बालक को पता चला कि क्या हुआ है। उस बच्चे को बहुत क्रोध आया। यद्यपि वो केवल बच्चा था, 12 वर्ष का ही था केवल, फिर भी उसके मन में एक प्रकार का घमंड था कि हम ब्राह्मण हैं। और उन्होंने बड़े क्रोधित होकर जोर जोर से भर्त्सना की राजा परीक्षित की, जो कि अब राजमहल में तो पहुंच गए थे। वो कहने लगे कि ये जो तथाकथित पृथ्वी के रक्षक हैं, वो वास्तव में हम ब्राह्मणों के द्वार में केवल कौओं जैसे, कुत्तों जैसे होते हैं। वो हमारे कृपा पे, हमारे आशीर्वाद के ऊपर निर्भर होते हैं। और आज देखो उन्होंने कैसे किया, किस तरह का व्यवहार उन्होंने किया, हमारे पिता का अपमान उन्होंने ऐसे घोर अपमान किया। और काफी भला बुरा राजा परीक्षित के बारे में कहने लगा वो बच्चा। आंखें लाल लाल हो गई, आग बबूले हो गए क्रोध के कारण। और फिर कौशिक नदी के जल का स्पर्श करते हुए एक भयंकर शाप का उच्चारण किया। अब प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये बच्चा ये नहीं जान पाया कि उसकी आयु केवल 12 वर्ष की थी, और फिर भी उसके अंदर ये क्षमता थी, इस तरह की योग सिद्धि थी, ब्रह्म तेज था, कि वो दूर पर रह के भी समझ पाया कि वहां आश्रम में क्या हुआ है। और दूसरी बात कि श्राप देने के लिए विश्व सम्राट और शुद्ध कृष्ण भक्त राजा परीक्षित को श्राप देने की क्षमता उसमें थी। तो ये दो घटनाएं संभव केवल इसलिए थी कि राजा परीक्षित जैसे राजा थे धरती के ऊपर। क्योंकि राजा परीक्षित इतने धर्मपरायण राजा थे, उन्होंने वर्णाश्रम की पद्धति को इतने सुचारू रूप से प्रचलित रखा था कि हर एक वर्ण और हर एक आश्रम के जो सदस्य थे वो अपने अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाते थे श्री कृष्ण की सेवा में। इसलिए अपने अपने वर्णों की शक्ति या विशेषताएं, जो गुण हैं, वो सभी को प्राप्त होते थे। लेकिन आजकल ऐसे नहीं होता। बच्चों की बात दूर है, बड़े भी किसी भी वर्ण के क्यों न हो, उस वर्ण की ताकत तो रहती है ही नहीं। परंतु एक 12 साल के बच्चे के पास ऐसी शक्ति, तो ये श्रेय तो इसका राजा परीक्षित को जाता है, क्योंकि उन्होंने इस तरह से राज्य को संभाला हुआ था और एक ऐसे धार्मिक वातावरण का निर्माण किया था उन्होंने राज्य में। परंतु 12 वर्ष के केवल होने के कारण इतनी परिपक्वता इस बच्चे में थी नहीं। तो बच्चे ने कौशिक नदी के जल का स्पर्श करके एक भयंकर शाप कहा कि ये राजा जिन्होंने मेरे पिता का इस तरह से अपमान किया है द्वेष और घृणा के कारण, अज्ञान के कारण, आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग आके उसको डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। विश्व सम्राट को एक 12 साल का बच्चा भी शाप दे सकता था। तो फिर वो बच्चा अपने पिता के आश्रम में लौट के आया और देखा कि पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप है। बहुत दुखी हो गया इस दृश्य को देखकर, जोर जोर से रोने लगा। और उसके रोने की आवाज सुनकर शमिक ऋषि का ध्यान भंग हो गया, उनकी आंखें खुल गईं। और देखा कि सामने उनका बेटा उनका बच्चा रो रहा है। पूछा, क्या बात है, क्यों रो रहे हो इतने जोर से? तो बच्चे ने बताई बात, सारी बात बता दी कि राजा परीक्षित आए थे, भूख प्यास से ग्रस्त थे, आपने जब स्वागत नहीं किया तो उन्होंने आपके कंधों पर मरा हुआ सांप रख दिया और क्रोधित होकर चले गए। मुझे योग शक्ति के बल पर पता चला तो मैंने इस तरह का शाप दे दिया उनको कि 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु होने वाली है। और जैसे ही शमिक ऋषि ने यह बात सुनी तो वो हैरान हो गए और अपने बच्चे को की भर्त्सना करने लगे। अरे मूर्ख बालक, तुमने कितनी बड़े गलती कर ली, तुमने अपने आप को क्या सोचा था, तुमने ये साहस कैसे की कि विश्व सम्राट राजा परीक्षित को तुमने श्राप दे दिया? किस तरह का पागलपन है ये, किस तरह की मूर्खता है? एक साधारण राज्य की भी हत्या इस तरह से नहीं करनी चाहिए, यदि वो भगवान का भक्त न भी हो परंतु वो शक्तिशाली हो, ईमानदार हो, तो उसके राज्य में चोर डकैत आदि होते हैं, लुटेरे होते हैं, वो दूर रहते हैं और प्रजा शांति से जी सकती है। क्योंकि राजा जो होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, उसे नरदेव कहते हैं। और जब ऐसे राजा नहीं होता, राजतंत्र ऐसे नष्ट हो जाता है और धर्मपरायण राजा नहीं होते हैं प्रजा की रक्षा करने के लिए, तो फिर उत्पात हो जाता है। तो तुमने क्या कर दिया? और राजा परीक्षित कोई साधारण राजा है भी नहीं, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और भूख और प्यास से थकावट से ग्रस्त आदमी यदि क्रोधित हो जाए ये तो साधारण सी बात है, कोई असाधारण बात तो है नहीं, हमें समझ लेना चाहिए। और यदि उसने क्रोध में आके ऐसे कोई सांप मेरे कंधे पे रख भी दिया तो छोटी सी बात है, ऐसे छोटी सी बात के लिए तुमने राजा परीक्षित जैसे व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया, ऐसे श्राप दे दिया भयंकर तुमने। तो वहां शमिक ऋषि बहुत दुखी हो गए और उसी समय भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मेरे इस मूर्ख बच्चे को आप क्षमा कीजिए, उसे उसकी बुद्धि अल्प है, वो कच्चा है, परिपक्व नहीं है, उसे पता नहीं था कि कैसे बात करना चाहिए, क्या किसको श्राप देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इसलिए क्षमा कर दीजिए उसे। वैसे श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी के एक मित्र थे जो शमिक राजा शमिक ऋषि के शिष्य थे, इनका नाम था गौरमुख। तो गौरमुख को भेजा शमिक ऋषि ने, जाओ राजा परीक्षित को खबर दो कि मेरे मूर्ख बच्चे ने ऐसे शाप उनको दे दी है और मेरी ओर से क्षमा याचना करना कि मेरे बच्चे ने ऐसी बड़ी गलती कर दी। तो राजा परीक्षित जब सोच ही रहे थे दरबार में बैठे हुए कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, कोई दुर्घटना घटने वाली है, ठीक उस समय गौरमुख यहाँ पर चले आए और शमिक ऋषि का संदेश दे दिया। उधर श्रृंगी का इस तरह से व्यवहार करना ये एक बहुत विचार करने वाली बात है। पहली बात तो ये है कि भगवान ने यदि परीक्षित महाराज को निमित्त बनाना था श्रीमद् भागवत सुनने के लिए और इसके लिए उन्होंने एक बच्चे को क्यों चुना फिर? इसका उत्तर यह है कि बच्चे जो होते हैं वो परिपक्व न होने के कारण भगवान उनको क्षमा कर भी सकते हैं, यदि उनके द्वारा कोई गलती हो भी जाती है तो। दूसरी बात कि ब्राह्मणों के द्वारा ही ऐसे शाप होना था। इस घटना के बाद कलयुग का प्रभाव अब जोर से प्रारंभ हो गया और कलयुग का प्रारंभ वैसे तो हो चुका था श्री कृष्ण के दुर्भाव के समय से ही, परंतु राजा परीक्षित जब तक थे कली के प्रभाव को दूर रख पाए थे, लेकिन कली का प्रभाव अब प्रारंभ हुआ इस बच्चे के द्वारा जो कि एक ब्राह्मण का बच्चा था, ब्राह्मण का एक अयोग्य बच्चा ब्रह्म बंधु। और श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं अपने तात्पर्यों में कि कलयुग में हर चीज का घटन होता है, वर्णाश्रम धर्म का भी घटन होता है। इन चार वर्णों की तुलना शरीर के विभिन्न अंगों से की गई है। ब्राह्मण जो होते हैं वो सामाजिक शरीर के सर माने जाते हैं, क्षत्रिय बाहु होते हैं, वैश्य पेट होते हैं, शूद्र पैर होते हैं। सबको सर की बात माननी चाहिए अर्थात ब्राह्मणों की बात माननी चाहिए। व्यक्ति दूसरी जगह प्रभुपाद जी बताते हैं व्यक्ति का पेट बिगड़ जाए, हाथ पैर कुछ घायल हो जाए, फिर भी व्यक्ति कार्य कर सकता है, परंतु उसका दिमाग ही खराब हो जाए, दिमाग बिगड़ जाए तो फिर बहुत मुश्किल है। तो समाज को यदि नष्ट करना है तो कलि को पता था कि पहले ब्राह्मणों को प्रदूषित करना है। ब्राह्मणों को प्रदूषित करने से उनका पतन हो जाएगा और जैसे ब्राह्मणों का पतन होगा तो फिर क्षत्रियों का, वैश्यों का, सबका पतन हो जाएगा। और जो वर्णाश्रम धर्म की पद्धति है ये सारी योजना फिर समाप्त हो जाएगी। और जो कि कलि चाहते थे, कलयुग में तो ऐसे ही होना है। तो इस तरह से वैसे वराह पुराण में बताया गया है, श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो असुर आदि श्री कृष्ण के द्वारा नहीं मारे जा सके किसी कारणवश, उन्हें कलयुग में ब्राह्मणों के कुल में जन्म मिलता है। आजकल भी थोड़े अच्छे ब्राह्मण तो हैं, परंतु अनेक ऐसे भी तथाकथित ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हुए लोग हैं जो जघन्य से जघन्य कार्य करते हैं। ऐसे कार्य करते हैं कि कोई जो ब्राह्मण नहीं है वो भी नहीं करता। तो ये प्रवृत्ति कलयुग में है। तो खैर, राजा परीक्षित को खबर मिली। राजा परीक्षित ने डॉक्टर को नहीं बुलाया, वकील को नहीं बुलाया, सेनापति को नहीं बुलाया, अपने खजांची मुनीम को नहीं बुलाया। उन्होंने निर्णय लिया कि अब बुलावा आ गया है और राजा परीक्षित ने अपना निर्णय ले लिया। अब क्योंकि अंधेरा हो रहा है और हमें वटवृक्ष में भी जाना है, आगे चल के हरिद्वार भी पहुंचना है, इसलिए हम कथा अब पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगली बार जब भी हम बैठेंगे जहां हरिद्वार में हो या कहीं आगे, तो जो कथा बची हुई है यहां से वो हम वहां पे कह देंगे इसके बाद में। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि राजा परीक्षित ने क्या निर्णय लिया और आगे चल के कैसी घटनाएं हुई, तो आप इसी यात्रा में रहिए, आगे वापस मत जाइए। और अगली बार जब प्रवचन होगा तो प्रवचन की शुरुआत में इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अब हम जल्दी से उस वट वृक्ष के पास जाएंगे जिसके नीचे सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित बैठे थे अन्य ऋषि मुनियों के साथ में, और फिर वहाँ से हम तुरंत हमारे बसों में जाएंगे क्योंकि आज हमें हरिद्वार पहुँचना है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम।